यह प्रवचन सार जो शास्त्र है उसके ऊपर जो दिव्य ध्वनि सार नामक जो टीका लिखी गई है उसका हम पेज नंबर 9 देख रहे हैं। देवेंद्र भाई जरा इधर बैठे दो उनको। हाँ आवे 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 तारी जो इस बात तेरे तो कैसे आराम थी। ये हमने अभी देखो जल्दी अपना प्रवचन चालू होता है तो पहले से आप सारा अरेंजमेंट करके रखना, बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। और तुम बोले बिना कोई मानते ही नहीं है, ऐसी बात होती है। वास्तव में एक दूसरे को तो हम सहाय करना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए। बिल्कुल देखो पृष्ठ क्रमांक 9 हमने कल पहला जो श्लोक है और दूसरा जो श्लोक है उसके बाद के तीसरा जो श्लोक है वो चालू करने वाले हैं। अब तीसरा श्लोक पहले तो हमने 2 पढ़ लिया था। अब तीसरे में शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 दिव्य ध्वनि सार गाथा। उन सबको तथा मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान चाहिए, वो विद्वान हो गया विद्वान, तो विद्य डबल द चाहिए, विद्यमान अरहंतों को साथ ही साथ समुदाय रूप से और प्रत्येक को व्यक्तिगत वंदना करता हूँ। देखो यहाँ दो बातें उन्होंने बताई है, ये दो बातें इस तरह से है कि पहले में पहले अरहंत कहाँ रहते हैं उनका पता यहाँ लिख दिया है। तो कहते हैं कि इस मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान, अभी बात ऐसी है मनुष्य लोक और मध्य लोक, इसमें लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, लोग यानी हम जनता, कि मनुष्य लोक तो उसे कहा जाएगा कि जो ढाई द्वीप है जिसका डायमेंशन देखना जा रहा है उसको डायमीटर जो कहते 45 लाख योजन है वह मनुष्य लोक है। और मध्य लोक कहते हैं जो एक राजू वाला जो बीच का माप है मतलब लोकाकाश देखते ना उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है। और ये भी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो द्वीप समुद्र है जो बीच वाला जो जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप के बाद में जो लवण समुद्र है उससे दुगुना बड़ा है 2 लाख योजन। उसके बाद का जो खंड है धात की खंड वो 4 लाख, उसके बाद का कालोदरी समुद्र वो 8 लाख योजन, ऐसा इधर 8 लाख इधर 8, ऐसा गिनना उनको उधर ऐसा समझ जाएगा गोल का गोल पूरा 8 लाख। तो एक से दूसरा जिसको गुजराती में बमणा बमणा कहते हैं यानी डबल डबल, इस तरह से जो आखिरी जो लवण समुद्र है स्वयंभू रमन समुद्र, लवण समुद्र नहीं स्वयंभू रमन समुद्र, वो इतना चौड़ा है कि आधा राज्य उसकी चौड़ाई होगी, मतलब पाव राज्य इस तरफ पाव राज्य इस तरफ चल रहा है और बाकी आधा राज्य में आ जाना, तो कितना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम 4-5 में जाते हैं तो देखो ढाई द्वीप में जाएंगे तो 45 लाख योजन हो जाते और उसमें 16 मिला दो तो वो 5 द्वीप तक जाते, मतलब इतना उसका दुगुना पना बढ़ जाता है। तो हम असंख्यात द्वीप समुद्र जब देखते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई हम लंबाई पे छोड़ो तो ये हमारे ख्याल में आता है। तो ये सारा जो है वो मध्य लोक है। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि अनंत कहाँ रहते हैं तो मध्य लोक में रहते हैं तो हम बहुत बड़ी भारी भूल करते हैं। तो हमको क्या देखना है कि मनुष्य लोक जो है वह मनुष्य लोक में ही अरहंत की विद्यमानता है। अरहंत कहाँ रहते हैं तो मनुष्य लोक में। अब आगे ये तो हो गया उन सबको, यानी सबको इसमें कौन कौन आए, वर्धमान स्वामी तो पहले में आ गए, बाद में शेष तीर्थंकर भी हुए, सर्वसिद्ध भगवंत भी हुए और मुनि जो है मतलब आचार्य है उन सबको, तथा मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों को साथ ही साथ समुदाय रूप से यानी सबको यूनाइटेडली और सबको जुदा जुदा रीत से, मैं व्यक्तिगत यानी प्रत्येक को सेपरेटली मैं वंदन करता हूँ। अगला चौथा नंबर और पांचवा नंबर दोनों एक साथ है। इस प्रकार अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय वर्ग को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ। अब क्या कहना चाहते हैं, जो ये सारे जो है पंच परमेश्वर वो अपने स्वरूप में एकाग्र है, लीनता है, वही उनका दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसी जो अवस्था है उसी को ये आश्रम करके, वैसा मैं भी प्राप्त करके साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ, यानी मैं भी अंतरंग में स्थिर हो जाता हूँ तो मुझे भी उनके जैसा मेरा स्वरूप हो जाता है। वो उसके यानी अंतरंग में एकता, अंतरंग में स्थिरता करने के कारण से जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, मुझे भी आगे जाके निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। टीका, अब यह टीका भी अमृत चंद्राचार्य ने जो संस्कृत में की है उसके हम हिंदी में देखते हैं। ये भी देख लिया था हमने, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मैं जो सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से 3 लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है, अभी एकदम नीचे आना पहले तो हमको जरा वो अर्थ लगेगा। क्या कहते हैं, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप, ऐसा जो मैं प्रणाम करता हूँ, एकदम नीचे वाली लाइन, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, किसको प्रणाम करता हूँ, तो जो सुरेंद्र हो असुरेंद्र हो, यानी एक सुरेंद्र की नहीं बात की है, कितने होंगे सुरेंद्र जानती हैं आप? हाँ, कौन बोला? सौ कौन बोला? सौ। तो सारे ये जो सुरेंद्र है क्या, सारे के सारे, क्योंकि यहाँ सुरेंद्र और असुरेंद्र दो बातें तो यही बता दी। इंद्र तो जरूर है, पर उनमें भी कल्पवासी जो इंद्र होंगे वो अलग गिने जाएंगे, भवनत्रिक में जो होंगे वो अलग गिने जाएंगे, फिर एक मतलब पशुओं में जो सिंह है उसको भी इंद्र कहेंगे, राजाओं में जो इंद्र होगा उसको राजेंद्र कहेंगे, वो साले अलग हो गए ना। तो ऐसे सुरेंद्रों में कितने इंद्र है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये सब मिलकर सो है। हाँ, क्या नाम है देवेंद्र भाई, आप बताइए, कल्पवासी जो इंद्र होंगे वो कितने? हाँ हाँ हाँ, यानी 16 स्वर्ग है, हाँ तो उसके कितने होंगे? हाँ, अरे भाई उनको बोलने दो। हाँ स्वर्ग सौधर्म इंद्र के आते नहीं? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? 24 इंद्र और 24 प्रतिंद्र, ऐसे वो 48 होते हैं। सही बात है, आप बोलना चाहते हैं, बोलो।
16 स्वर्गों में 12 ही इंद्र है, 16 इंद्र है ही नहीं है, प्रत्येक स्वर्ग में एक इंद्र नहीं है, नीचे से चार में है, ऊपर के चार में और बीच में चार है, आठ में मिलकर,
तो 12 इंद्र है,
फिर उनके प्रति इंद्र ऐसा लेना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बताया ना आपको अभी। हाँ हाँ, दो दो इंद्र और दो दो प्रतिनिधि, यानी तो सर आपको चाहिए, मैं एक मिनट में बताता हूँ, अपना डायरी निकालो सर। हाँ बताऊंगा बताऊंगा, भवनत्रिक के भी होंगे ना, संभालो भाई, वो देखो बीच में सेकंड में। हाँ देखो, जो 100 इंद्र है उनके नाम बताऊंगा आपको, नाम नहीं संख्या, कौन कहां से कितने आते हैं। चौबीस और 24 होनी चाहिए जहां तक मेरे को याद है, फिर भी देखते हैं। 11 होगा तो सुधरेंगे। देखो सही बात है, 40 तो भवनवासी के हैं, तो 20 इंद्र और 20 प्रतिंद्र, ऐसे 40 भवनवासी के, और व्यंतर के 32 हैं, वह भी 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र। पहले चार स्वर्ग जो है उस चार स्वर्गों में 4 इंद्र और 4 प्रतिंद्र, बीच के जो यानी 5 6 7 8 ऐसा गिनते जाओ, तो बीच के जो आठ स्वर्ग है उसमें आठों में मिलकर चार इंद्र और चार प्रतिंद्र यानी आठ और आठ सोलह हो गए। और आखिर के जो चार स्वर्ग है यानी तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इनके चार इंद्र और चार प्रतिंद्र, ऐसे सोलह स्वर्गों में से चौबीस इंद्र और प्रतिंद्र हो गए। मैंने आपको हाँ गलत बताया। और ज्योतिष देवों में से एक इंद्र और एक प्रतिंद्र, और मनुष्य में से जो नरेंद्र होगा चक्रवर्ती कहते हैं, लेकिन हर हमेशा चक्रवर्ती होगा नहीं, क्योंकि चौबीस तीर्थंकर हैं तो चौबीस चक्रवर्ती नहीं है, इसलिए नरेंद्र कहो राजेंद्र कहो भुवनेन्द्र कहो जो भी आपको कहना। और एक तीरंचक में से जो अष्टापद सिंह है ऐसा इंद्र। अभी देखो चालीस और बत्तीस बहत्तर, बहत्तर और चौबीस कितने हुए सब छियानवे, दो ज्योतिष के अठानवे, एक मनुष्यों का और एक तीरंज का, इस तरह सौ इंद्र आते हैं।
ये देवलाली में दिया था ना स्वर्गों का विषय, उसमें वो बारह इंद्र होते हैं और पंच कल्याण को में सोलह बोलियां होती है सोलह इंद्रों की।
ठीक है, क्या है कि बहुत लोगों
की इच्छा होती है ना,
होती है कि हम इंद्र बने, सबकी इच्छा होती है कि हम तीर्थंकर के माँ बाप बने, कोई ऐसा नहीं इच्छा करता है कि मैं तीर्थंकर बनूं, तो कहने की बात है, जैसे जिसके भाव होते हैं वैसा वो करता है। चलो अब अपनी क्या बात हुई थी कि यहाँ ये जो बात चल रही है कि जो सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से तीन लोग के एक अनन्य यानी सर्वोत्कृष्ट अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है जिनको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसी बात आई ना, जिनमें घाती कर्म मल के दो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वर ता है, ये ता है ना तो ता की जगह ता चाहिए, परमेश्वर ता जो तीर्थता यहाँ है ना, तीर्थता यानी तीर्थपना, परमेश्वरता यानी परमेश्वरत्व ईश्वरत्व, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ है यानी मुनिराजों को भी तारने में ये भगवान समर्थ है, धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता है उन परम भट्टारक महादेवादि देव परमेश्वर परम पूज्य जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूँ। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले देखा था, अभी आगे हम चलते हैं। तत्पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए अंतिम ताव दिए हुए अग्नि में से बाहर निकले हुए उत्तम सुवर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं ऐसे शेष तीर्थंकरों को, ये अति क्यों लिखा है समझा नहीं है, शेष अतीत अति लिखा है वो अतीत के वो ती दीर्घ के पहले मतलब यहाँ पहली लिखी है अतीत तीर्थंकरों को और सर्व सिद्धों को ज्ञानाचार दर्शनाचार वीर्याचार मैंने वो देखा नहीं सर में लिख लिया क्या कहा, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है ऐसे श्रवणों लिखा है वो श्रमणों चाहिए श्रमणों को जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्व, ये साधक क्या लिखा है मालूम नहीं, साधुत्व लिखो, वो देखो देखो अखा अखा शब्द अलग लिख लो, साधुत्व ये त्व जो है वो तत्व वैसा डबलता नहीं चाहिए, काली सिंगल त और आधा त और पूरा व, साधुत्व रूप विशेषण से विशिष्ट भेद युक्त है, उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये पूरा शब्द है ना साधुत्व रूप, वो ठीक तरह से लिख लीजिएगा क्योंकि उसमें गड़बड़ करने जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेश्वरों को उस व्यक्ति में यानी पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को, यानी जो पंच परमेश्वरी में जितने साधु है, जितने आचार्य है, उपाध्याय है, जो कोई अरहंत है, सिद्ध है, इन सबको क्या कहते हैं, उस व्यक्ति में पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को, यानी जो जो जिस पर्याय के धारक है ऐनी सबको, वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से, मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थ नायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके, महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सिमंदर आदि तीर्थंकरों की भांति मानव वर्तमान काल में ही विद्यमान हो, इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतवन करके उन्हें युगपत तो चाहिए, युगपत युगपत दो नहीं चाहिए, अर्थात समुदाय रूप से और प्रत्येक प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूँ। ये इस प्रकार से ई नहीं चाहिए, वो की चाहिए, इस प्रकार से संभावना करता हूँ। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ कि इसके बारे में हमने पहले देखा था, काफी उसके ऊपर विश्लेषण किया था मैंने, किस प्रकार संभावना करता हूँ। मोक्ष लक्ष्मी को स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव आनंदमय प्रसंग है, उसके उचित मंगलाचरण भूत जो कृतिकर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार कृतिकर्म शास्त्र में उपदेशे हुए स्तुति वचन के द्वारा संभावना करता हूँ। अब इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्वसाधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाव विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुओं के आश्रम के, जो कि आश्रम विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रदान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंद की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सकल चारित्र को सराग चारित्र को वह सराग चारित्र क्रम से आ पड़ने पर भी क्या कहा देखो, पहले तो ये कहा कि कषाय कण विद्यमान होने से यानी जो संज्वलन कषाय जो है उसकी विद्यमानता होने से जो पुण्य बंद की प्राप्ति का कारण है, वो जो संज्वलन कषाय जो छठे गुण स्थान में जो इस मुनिराज के उत्पन्न होता है वो कैसा है, तो कहते हैं कि पुण्य बंध की प्राप्ति कराने वाला है। उसको क्या कहा गया, सराग चारित्र, और वह भी कैसा है, लाना नहीं पड़ता है, क्रम से आ पड़ने पर भी यानी गुणस्थान आरोह के क्रम में बला चारित्र मोह के मंद उदय से आ पड़ने पर भी दूर उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है, ऐसे वितराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो सराग चारित्र है वो पुण्य बंध का कारण है और जो वितराग चारित्र है वह निर्वाण प्राप्ति का साधन है, ऐसा कहा। ऐसे वितराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ऐक्य स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त करता हूँ, यह इस प्रतिज्ञा का अर्थ है। इस प्रकार तब इन्होंने यानी श्रीमत कुंद कुंद आचार्य देव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है। अब गाथा 1-5 पर प्रवचन। जिनके भव का अंत निकट है ऐसे श्री कुंद कुंद आचार्य देव का बहुमान करते हैं। प्रथम क्या कहें, जिनके भव का अंत निकट है ऐसे श्री कुंद कुंद आचार्य देव का बहुमान कर देते हैं।
गाथा 1-5 का जो मथाला था ना ऊपर हेडिंग, उसमें जिसका संसार का किनारा निकट आया है इस तरह से उनका वर्णन किया था कुंद कुंद आचार्य का।
अच्छा अच्छा, अमृत चंद्राचार्य कह रहे
हैं। हाँ
अच्छा, अमृत चंद्राचार्य
कुनकुंदाचार्य के बारे में कह रहे हैं कि अब जिनका इसमें है, देखो 8 पर
बरोबर, जिनके संसार हाँ, समुद्र का किनारा
निकट। 1-5 का ये हेडिंग है कि अभी यहाँ 1 गाथा से कुनकुंदाचार्य ये सारा ग्रंथ लिखेंगे, तो उसके पहले अमृत चंद्राचार्य कुनकुंदाचार्य के बारे में कहते हैं कि जिनका समुद्र संसार समुद्र का किनारा निकट है, यानी अभी जो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं, जिनकी विवेक ज्योति साथी से विवेक ज्योति प्रकट हो गई है वगैरह वगैरह, ये सब है ना।
तो पहले जो कार्यक्रम था उसका हाँ। विश्लेषण गुरुदेव कर रहे हैं। प्रथम देव तथा अनेकांतमय ज्ञान तथा वाणी को नमस्कार किया था, अब श्री कुंद कुंद आचार्य देव को स्मरण करते हैं। श्री कुंद कुंद आचार्य देव इस प्रवचन सार ग्रंथ को बनाने वाले नग्न दिगंबर मुनि है। जैन दर्शन में मुनि नग्न दिगंबर ही होते हैं, अन्य मुनि नहीं कहलाते। जया बेन इधर उधर देखते हैं। अरे किताब में देखो बेन, अपनी क्या बात क्या करे। देखो हमारी पहले ऐसी कोई विचित्र मान्यता थी, आपकी बात छोड़ो मैं मेरी बात करता हूँ। मैं जब स्कूल में था तब हमको सब लोगों से, आप कौन से, तुम कौन से, हिंदू है, तू कौन है, ये है, तू कौन है, मैं जैन हूँ, वो जैन, अरे जिनके साधु नंगे घूमते हैं कपड़ा नहीं उनके पास पहनने के, ऐसे जैन, तो हमको इतना खराब लगता था कि क्या हम कौन से कुल में जन्मे हैं, ऐसे जिनके साधु ऐसे उनके पास कुछ नहीं, स्वरूप मालूम नहीं था ना, तो हमको भी अंदर से ऐसा लगता था कि कौन से इसमें हम कुल में जन्म लिए। और अभी तो ऐसा गर्व लगता है कि क्या उसका क्या कहना, कि ये तो हमारा महाअहोभाग्य है कि हमें ऐसे कुल में जाति में धर्म में जन्म मिला। क्योंकि देखो हम तो, मैं तो कहता हूँ हमारा तो ठीक, लेकिन जो जो जैन कुल में जन्मे नहीं है, जैन धर्म में पैदा नहीं हुए है, वे भी जैन दर्शन को अनुसरते हैं, तो उनका पुरुषार्थ कितना होगा। अरे हमारी बात तुम्हारी तो बात छोड़ो, मैं तो कहता हूँ सुशीला बेन कि जो स्वयं मुनि पद में स्थित थे, यानी जिनके लेक्चर में हजारों लोग बैठते थे और उनको खम्मा खम्मा करते थे, अब तो गुजराती समझ के खम्मा खम्मा यानी क्या, ऐसे जीव को जो पता लगा अरे ये पूरा खोटा मार्ग और ये मैं छोड़ना चाहता हूँ, और उन्होंने छोड़ा छोड़ा तो छोड़ा, खाली छोड़ा नहीं तो उनको वो जिस संप्रदाय में थे उसमें तो उनको ताम दाम दंड भेद, ये समझ में आया, यानी उनको समझाया, पैसे का लालच दिया कि देखो तुम कैसा अलग होते हो, फिर तुमको कौन खाना खिलाता है, तुमको डंडे मारेंगे, ऐसे सब तरह से उनके काम दाम, दाम यानी पैसा, दंड भेद यानी वो तुम्हारे फॉलोअर है ना, उनके पास जाके कुछ भी ऐसा फुटफुट करना तो वो निकल जावे, ऐसा कर करके उनको बहुत विरोध किया। फिर भी वो जरा भी डिगे नहीं, वो उन्होंने ऐसा कहा, हमने जो मुनि पद लिया था वो क्या खाना खाने का व्यवस्था के लिए थोड़ी किया था, हमें खाना नहीं मिले चलेगा लेकिन हम सत्य मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। अरे उन्हें तो ऐसा कहा था कि आप भले इधर रहो, आप जो पढ़ना है पढ़ो, लोग सुनते हैं, क्योंकि सब जानते थे वो लोग कौन सारे वो क्या आगेवान होते हैं ना, ये शास्त्र में बैठने वाले खाली टाइम पास करने को आते हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं कौन सुनता है, उनके जमाने की बात है, अभी भी ऐसे चलते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन तो साइन वाले हैं ना। तो आप मत जाना, इधर ही रहना, लेकिन कुछ नहीं। अब उनकी बात सोचो जो ऐसे उच्च पद में थे, गृहस्थ अवस्था में आए और अपना जो उस समय तो ऐसा था कि सारे माहौल क्रांतिकारी, क्रांतिकारक, ओ अपना हिंदुस्तान को आजाद करना है, स्वतंत्र करना है, वो तो स्वयं को स्वतंत्र करके गए, करके गए यानी मैं स्वतंत्र ही हूं ऐसा उन्होंने जाना भी और औरों को भी जनाया। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैन दर्शन में मुनि नग्न दिगंबर ही होते हैं, अन्य मुनि नहीं कहलाते, अन्य को मुनि भी नहीं कहा जाता है। शांति रखना, केवल नग्नत्व से भी मुनिपना नहीं होता है। लोग बोलते हैं आप दोनों बाजू से बोलते हैं, अरे दोनों बाजू से नहीं, जो सही है वही कहते हैं, क्योंकि बाह्य में नग्नत्व ही मुनि का लक्षण हो तो अपने घर में छोटा बालक साल दो साल का, तो सब साहिल छोटा सा क्या करता था ना, तो हम उसको भी मुनि कहे क्या, उसको तो छोड़ो, अरे सारे जो तीर्यंच है हा? कौन हाँ हाँ सब समझ जाना क्या, तो कहते हैं वो नग्नत्व यह मुनित्व नहीं है, मुनिपना जो है वह तीन कषाय के चोपड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता उनमें जो प्राप्त है, उस वितरागता को मुनि कहा गया है। ख्याल में, लेकिन हम वो भी नहीं जानते, ऐसी गड़बड़े क्या कहा, देखो जैन दर्शन में मुनि नग्न दिगंबर ही होते हैं, अन्य मुनि नहीं कहलाते, भाव में राग की चिकास का वस्त्र नहीं था। क्या कहा देखो, देखो बहुत बढ़िया शब्द बोलो, राग में भाव में राग की चिकास का वस्त्र नहीं था और बाहर में कपड़ा नहीं था, ऐसे भावलिंगी मुनि श्री कुंदकुंदाचार्य देव का मंगलाचरण में तीसरा स्थान आता है, भगवान महावीर और गौतम गणधर के पश्चात कुंदकुंदाचार्य आते हैं। क्या कहते हैं, गुरुदेव की ही दूसरी भाषा में बोलना हो, जो अंदर से नग्न है उसे बाहर में वस्त्र नहीं होते। क्या वसंजी भाई समझे, विसंजी भाई अंदर से नग्न यानी क्या, कि जो अंतर में कोई विकार है नहीं, जिनके जो अंदर में स्वयं का स्वरूप समझ गए हैं, यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह राग के परिणाम जो विकार के परिणाम है वो मैं नहीं हूँ, उससे भी जो भिन्न ऐसा स्व का स्वरूप जिन्होंने जाना है, वो अंदर से कषायों से बिल्कुल जुदे हैं, उनको अंदर से नग्नता कहते हैं। तो जो जानते हैं कि यह शरीर रूप मैं नहीं हूँ, क्या यह समाज आबरू ये कुछ नहीं, खलवे ऐसा जब अपने स्वरूप को जानते हैं, जो स्वयं राग यानी राग द्वेष मोह काम आदि जो परिणाम है उससे जुदे ऐसे स्वयं के स्वरूप को अनुभवते हैं, उनके बाह्य में कपड़ा रखने का भाव तक नहीं आता। इसलिए कहा कि जो अंदर से नग्न है, यहाँ क्या लिखा, भाव में यानी खुद के परिणामों में राग की चिकास का वस्त्र नहीं है, यानी राग के प्रति कोई भी लिप्तता नहीं है, राग के प्रति कोई लगाव नहीं है, राग का राग नहीं है। ख्याल में आया, भाव में राग की चिकास का वस्त्र नहीं था और बाहर में कपड़ा नहीं था। देखो हमने देखा है जो परिग्रह जिसको कहते हैं, तो परिग्रह तो दो प्रकार के हमने देखे थे। जय बहन जानते हैं परिग्रह दो प्रकार के कौन से हैं? अरे हम नहीं जा रहे बहन। हाँ लता बहन आप कहो, बहुत अच्छा। अंतरंग परिग्रह याद आ गया अभी, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह में कौन से कितने परिग्रह होते हैं? अंतरंग परिग्रह प्रतिभा बहन, हाँ बोलो। अंतरंग परिग्रह कितने होते हैं? नंबर चाहिए खाली, 1, 2, 50, 100, 200 नहीं मालूम, दोन मालूम है, इतने दो प्रकार मालूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं तो हमारी लीला बहन बताएगी उसमें क्या है। परिग्रह थी रही छो एटली खबर क्या थी पड़े है? आप जानती बहन प्रभा बहन, आप बोलना नहीं चाहते, ये और खोटी बात है। हाँ क्यों साहब? मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरी जबान नहीं है, ऐसा बोलने वाला जैसा हो गया। देखो जैसा झूठा बोलना पाप है वैसा सच को छुपाना भी पाप है, कई वाहनों ने। भावना बहन आप जानती हैं? हाँ 14, कौन कौन से गिन पाएगी आप? बहुत आसान है। हाँ शाबाश। मिथ्यात्व, चार कषाय, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। देखो देखो देखो, तीन, हाँ तीन पहले बातों समझ लो। एक पहले में पहले सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व है, उसके बाद में चार कषाय यानी क्रोध मान माया लोक, ये दूसरा दूसरी पार्टी हो गई, मिथ्यात्व कषाय और तीसरा है वो नो कषाय। नो कषाय कितने होते हैं भैया? हाँ हाँ, और सब सब और क्या क्या होते हैं? कोई बात नहीं, नंबर कितने हैं? 9, बहुत अच्छा, 9 नो कषाय। क्या नाम हूँ? नैना जी आप बताएंगी 9 नो कषाय के नाम? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और तीन वे। ये सारे क्या है? ये 14 हो गए ना, 1 + 4 = 5 + 9 = 14, ये 14 अंतरंग परिग्रह है। चल रहा है अब ये अंतरंग परिग्रह तकरीबन यानी वैसे देखा जाए तो द्रव्यान योग की अपेक्षा से मुनियों को होते ही नहीं। अब कर्णान योग कहेगा नहीं, संज्वलन क्रोधमान वाले लोग है वो अभी है, लेकिन इसीलिए उनको निष्परिग्रही कहा गया है, जिनके अंदर में कोई भी क्रोधमान माया लोभ नहीं है, मिथ्यात्व तो है ही नहीं, और जिनके ये नो कषाय भी बहुत है नहीं के बराबर है, ऐसे जीवों को बाहर में वस्त्र रखने का परिणाम ही नहीं होगा, इसलिए उनके बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह भी नहीं होते। बाह्य परिग्रह जानती ना बेना? बोलो बोलो। धन धान्य दास दासी है, हाथी घोड़ा, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ सोना चांदी, हाँ अभी आगे, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बना बता आपने, 60%। हाँ आता था, कोई बात नहीं, अभी आएगा, अभी 2 मिनट में आएगा, मैं पूछूंगा, घबराना मत। हाँ आपने तो 6 तो बता दिया, धन धान्य दास दासी और सोना चांदी, हाथी घोड़ा मत लेना। हाँ आगे बोलो डॉक्टर साहब। क्षेत्र मकान वस्त्र और बर्तन, सबको झटका लग गया ना, बर्तन भी नहीं रखना और वस्त्र भी नहीं, अरे हम तो क्षेत्र भी रखते हैं, बड़े बड़े संस्थानिक जैसा हमारे पास पूरा स्थिर रहता है क्या। तो जिसके अंतरंग में परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह मौजूद है, ऐसे जीवों के बाहर में परिग्रह होगा। ये मुनियों की अपेक्षा से बोल रहा हूँ भैया, ख्याल में आया। जय बेन आवी बात हो बापा, यहाँ अहिया जबरदस्ती नहीं मानव पड़े एम नहीं हो, हारू लगे तो मानो ना तो छे ना, अत्यार सुधी फरिया तो आज फरी एम हूँ, अपने टेवायेला छे ना। देखो तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाव में राग की चिका, यानी भाव में अंतरंग में कोई राग द्वेष नहीं है। कौन से? ये जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग की चिकास का वस्त्र नहीं है, और बाहर में कपड़ा नहीं था। तो कितनी मतलब कुंद कुंद आचार्य के प्रति उनकी भावना होगी वो उन्होंने स्पष्ट की है। ऐसे भावलिंगी मुनि श्री कुंद कुंद आचार्य देव का तीसरा स्थान आता है, इसमें मंगलाचरण में। ये मंगलाचरण आपको आता है? वसंत जी भाई, विशन जी भाई, क्या नाम में गड़बड़ होता है, रोज बोलते हैं ना आप। हाँ अच्छा, हमारे देवेंद्र भाई बताएंगे, कल से याद करना आप। हाँ बोलो साहब। बहुत अच्छा, समझ में आया ना। आप लोग कुछ अलग बोलते होंगे, कौन कैसा है आज, मैं तो नहीं जानता हूँ जो भी आप बोलते होंगे, लेकिन हम यहाँ तो भाई तीसरा क्रमांक जो है वह कुंद कुंद आचार्य का है। क्या कहा आगे? भगवान महावीर और गौतम गणधर के पश्चात कुंद कुंद आचार्य आते हैं। कैसे हैं श्री कुंद कुंद आचार्य? जिनने जिनके संसार समूह का समुद्र का चाहिए किनारा निकट है। कैसा संसार समुद्र का किनारा निकट है, आत्मा के अनुभव सहित रमणता करने वाले श्री कुंद कुंदाचार्य देव को संसार का अंत निकट है। इस प्रकार श्री अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि कैसे हैं श्री कुंद कुंदाचार्य देव, जिनकी नग्न दशा थी, चिदानंद आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद में मस्त थे, जो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने इस प्रवचन सार को बनाया है। अनादि का संसार था यह बात की, किंतु अब ये अवतार बंद होने वाले हैं। अवतार का अर्थ है यहाँ जन्म मरण लेना, वो 14 अवतार में से कोई अवतार फवतार नहीं है। ये लोगों की ऐसी मान्यता है, अवतार कहने से वो जो पहला अवतार वो ऐसा हो, दूसरा पांचवा दसवा ऐसे ही नहीं, ये अवतार का अर्थ लेना जन्म और मरण। अनादि का संसार था यह बात की, किंतु अब ये अवतार बंद होने वाले हैं। श्रीमंदर भगवान महाविदेह क्षेत्र में विराजते हैं, उनके पास कुंद कुंदाचार्य देव 8 दिन रहे थे, उनकी वाणी सुनी थी, उसके बाद इन शास्त्रों को बनाया है। ऐसा कहने में आता है कि जब वे महाविदेह क्षेत्र से वापस लौटे थे तब उनको यह प्रवचनसार लिखने की मतलब इच्छा हुई, कहना भी ठीक नहीं, उसके बाद उन्होंने लिखा। हाँ प्रवचन का, हाँ जी भाव आया। हाँ ठीक, जो मुझे मालूम है उतना मैं बोलूंगा, मुझे अन्य की मालूम है। आप जो कहते हैं पांचों उसके बाद हुए हैं, मुझे मालूम नहीं है। आपने कहीं पढ़ा हो तो बराबर होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये प्रवचन था तो उसके बाद ही बना है, ये तो बहुतों के मुख से मैंने सुना है। क्या लिखा देखो, श्री मंदिर भगवान महाविजय क्षेत्र में विराजते हैं, उनके पास चंद्रकंद आचार्य जो 8 दिन रहे थे उनकी वाणी सुनी थी, उनके बाद इन शास्त्रों को बनाया है, यानी अनेक शास्त्र बताए। उस मुनिराज को उन मुनिराज को संसार अर्थात विकार का नाश होने वाला है और निकट में ही मुक्ति है, ऐसे महात्मा कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचनसार बनाया है, ऐसा कहकर उनका बहुमान करते हैं। श्री कुंदकुंदाचार्य भगवंत को उत्तम विवेक ज्योति प्रकट हुई है तथा वे कैसे हैं, उनको अतिशय विवेक ज्योति प्रकट हुई है। चौथे गुणस्थान से ही निर्मल भेद ज्ञान होता है, किंतु यहाँ तो मुनि दशा की बात है। ये अतिशय लिखा है ना, तो अ की जगह सा करना, साती से। कहा चौथे गुणस्थान से ही निर्मल वेद ज्ञान होता है, किंतु यहाँ तो मुनि दशा की बात है। विवेक ज्योति प्रकट हुई है जिसमें वे पंच महाव्रत के राग को जहर समझते हैं। इस प्रकार पुरुष की पहचान, पुरुष यानी आत्मा, कराकर पुरुष प्रमाण से वचन प्रमाण कहते हैं मेरा ज्ञान। ये क्या समझ में आया क्या? इस प्रकार आत्मा आप बोल रहे हैं, बोलो।
देखो पहले तो ये कथन किसने, प्रवचन सारी किसने लिखा है ये बताने के लिए पहले कुंकुंदाचार्य का वर्णन कर दिया, तो उनकी प्रमाणता बताकर फिर उनके वचनों की प्रमाणता बताएंगे। जैसे हम सर्वज्ञ की पहले सर्वज्ञ का स्वरूप देखते हैं और फिर वो कहते कि ये सर्वज्ञ ने सारा जानकर कथन किया, वैसे ही यहाँ कुंकुंदाचार्य भगवान का वर्णन करके फिर उनके वचन को भी प्रमाण कहते हैं।
क्या कहा उन्होंने देखो, इस प्रकार पुरुष की पहचान कराकर, यानी पुरुष यानी यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव, उनकी पहचान कराकर पुरुष प्रमाण से, यानी कुंदकुंदाचार्य के वो प्रामाणिक थे ऐसा बताकर वचन प्रमाण कहते हैं। मेरा ज्ञान स्वरूप राग से भिन्न है, ऐसी भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ है, किंतु केवल ज्ञान नहीं हुआ, और केवल ज्ञान हुआ हो तो साधक दशा नहीं होती। मैं निमित्त और राग के स्वरूप से जुदा हूँ, ऐसी विवेक रूपी छैनी पड़ी है, अर्थात भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ये क्या कहते हैं? देखो ये हमने अरविंद भाई समय सार में पढ़ा था कि राग और ज्ञान में जो एकता अज्ञानी को मालूम होती है वो क्या कहते हैं, कि जैसे ये संगमरमर का पहाड़ होता है तो वहाँ बीच में कहाँ जो त्राड़ बोलते हैं ना गुजराती में, यानी छेद दिखता है, ये ऐसी लाइन दिखती है, तो वहाँ बारूद लगा के बारूद से वो पहाड़ उड़ाते हैं, तो पूरी पड़ की पड़ मतलब पूरा ऐसा ये निकलता है, अलग हो जाता है। वैसे यहाँ कहते हैं राग और ज्ञान ऐसा एक में हुआ है, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं वो प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान रूपी छैनी, उसको बीच में बराबर पटकते हैं, जहाँ वो छेद दिखता है या जहाँ उसमें त्राड़ दिखती है वहाँ पर वो रखकर उसको जुदा करते हैं, और मैं राग से जुदा हूँ ऐसा भिन्न अनुभव करते हैं। तो वही बात यहाँ बताई है, क्या कहते हैं, मैं निमित्त और राग के स्वरूप से जुदा हूँ, ऐसी विवेक रूपी छैनी पड़ी है, पड़ी यानी वहाँ उन्होंने मारी है हैमर्ड, अर्थात भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उन्होंने एकांत विद्या का नाश किया है। आत्मा एकांत नित्य ही है, एकांत अनित्य ही है, एकांत अशुद्ध है, ऐसा एकांत अभिप्राय हृदय में से निकल गया है, अन्य सभी मत एकांती है। ये ऐसा एकांत कहे तो वो भी एकांती है, अन्य ऐसे एकांत रूप से मानने वाले सारे एकांती है। कुंदकुंदा आचार्य के समय में जैन संप्रदाय में ये भाग पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि केवल ज्ञान कैसा होता है और शास्त्र कैसे होते हैं ऐसा स्मरण आ गया है, इसलिए कहा है कि उन्होंने विरुद्ध ज्ञान का नाश किया है। यानी जो जैन दर्शन के अलावा जो अन्य कुछ जानने मानने वाले थे उनका उन्होंने विरोध कराकर विरुद्ध ज्ञान का नाश किया। केवल ज्ञान पहले हो और केवल दर्शन बाद में हो, ऐसा क्रमिक उपयोग खंड खंड ज्ञान केवल ज्ञान में नहीं होता। कि पहला बता के बाद में उसको नलीफाई करते, निगेटिव निगेशन करते, प्रथम व्यवहार और बाद में निश्चय होगा, ऐसा आग्रह छूट गया है। अज्ञानियों ने सर्वज्ञ के नाम से कल्पित नए शास्त्रों की रचना की है, वे ज्ञानियों को मान्य नहीं है, यह बात इसमें आ जाती है। विभाव से और निमित्त से लाभ होता है, ऐसे एकांत मत का उन्होंने नाश किया है। यानी क्या कहा, विभाव से, विभाव यानी यहाँ क्या, पुण्य परिणाम से लाभ होता है ऐसा जो मानते हैं वह एकांत मतवादी है। और कहते हैं ऐसे एकांत मत को भी उन्होंने उनका भी नाश कर दिया है। कुंदकुंदा आचार्य भगवान अनेकांत विद्या प्रकट करके अत्यंत मध्यस्थ हुए हैं। मध्यस्थ यानी समता वृत्ति जिन्होंने धारण की है, तथा पारमेश्वरी अनेकांत विद्या प्राप्त करके, पारमेश्वरी यानी परमेश्वर से प्राप्त हुई ऐसा नहीं, पारमेश्वरी यानी नैसर्गिक नेचुरल, क्यों नेचुरल, की वस्तु का स्वरूप ही नेचुरल है, वो किसी ने बनाया नहीं है, तो जैसा उसका स्वरूप है ऐसा जानकर ऐसा मानकर वो विद्या प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह छोड़ने से वे अत्यंत मध्यस्थ है। इन शास्त्र में भगवान सर्वज्ञ द्वारा कही गई दिव्य ध्वनि की बात है, अपना हित हित स्वयं से ही होता है और अन्य से तीन काल में नहीं होता। देखो उन्होंने क्या कहा था, ये विभाव से और निमित्त से लाभ होता है ऐसा मानना एकांत है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि अपना हित अपने से होता है और अपना हित दूसरों से होता है, ऐसा लिखा ना सुशीला में, कैसा लिखा देखो, देखो अपना हित अहित दोनों साथ में लिया, तो हमने तो क्या माना, हमने जो सही मार्ग मिला वो तो हमने हमारा पुरुषार्थ किया, इसलिए तो हमको ये सही मार्ग मिला। तो साहब आज तक क्यों नहीं शुभ पुरुषार्थ किया, अरे क्या करें, हमको ऐसे ही सामने वाले मिले, कौन गुरु, ये जो हमें खोटे रास्ते लेके गए, तो हम किसके ऊपर नजर कर रहे हैं, निमित्त के ऊपर, ख्याल में ऊपर जो बात कही थी ना, विभाव से और निमित्त से लाभ होता है, ऐसे एकांत मत जो है तो ऐसा मानना क्या हो गया, पर से मेरा कार्य होता है, तो अगर पर से मैं बिगड़ सकता हूँ तो पर से भी सुधरूंगा, तो मेरा मुझे क्या कहते हैं बंद क्यों हो रहा है, कि हमको खोटे सारे साले मिल गए इनके कारण मुझे ऐसा होता है, तो अभी अभी सारे अच्छे मिल गए तो मुझे मोक्ष होगा। यहाँ कहते हैं तेरे को मोक्ष होगा या बंद होगा दोनों ही तेरे से ही होगा। क्या कहते, देखो अपना हित अहित स्वयं से ही होता है। देखो ऐसा कहते हैं कि यह जीव जैसा स्वभाव ईश्वर है, यानी स्वभाव का ईश्वर है, स्वभाव रूप परिकरण परिणमन करने में ईश्वर है, वैसा वह विभावेश्वर भी है, विभाव करने में भी वह ईश्वर है, विभाव करने के लिए दूसरा कोई उसे विभाव रूप परिणमा देवे ऐसी बात है नहीं। और आगे कहते हैं ये पुद्गल है वो जड़ेश्वर है। क्यों कि वो पुद्गल का जो परिणमन है वो कोई अन्य करा दे ऐसी बात नहीं, वो स्वयं का परिणमन स्वयं करता है। तो हमें क्या बनना है, विभावेश्वर बनना है क्या जड़ेश्वर बनना है? मेरे नहीं नहीं नहीं, हमें तो स्वभावेश्वर बनना है। अरे तू स्वयं स्वभावेश्वर है, बनना क्या है अभी तुझे? पहला मान तो सही कि मैं स्वभावेश्वर हूँ, तो पर्याय में स्वभावेश्वर बन ही जाएगा। तो क्या कहा देखो, अपना हित अहित स्वयं से ही होता है और अन्य से तीन काल में नहीं होता। ना हित अन्य से होता है ना अहित अन्य से होता है। देखो हम देखते हैं ना, आपको मालूम है कि भगवान महावीर स्वामी का समोचरण लगा था और महावीर स्वामी के 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी। तो दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी तब क्या बात हुई है? तो 66वें दिन में वो इंद्रभूति जो थे वो पहले तो अन्यमती थे, वहां आते ही उनका मान गल गया और उनको साक्षात मुनि दशा लेने के भाव हुए, वे मुनि हुए। यहां तक के उनके ज्ञान का ऐसी पर्याय पलटी कि वे गणधर हुए। तो वहां और एक जन व्यक्ति वहां हाजिर था, कौन के पारसनाथ भगवान के जो गणधर थे उनका शिष्य उस समय उस समोसरण में था। आपको मालूम है पारसनाथ भगवान और महावीर इनमें खाली 300 वर्ष का डिस्टेंस है, मतलब फर्क है। तो उनको लगा अरे मैं इतना सीनियर मोस्ट और मुझको गणधर बनाने के बदले ये कौन बाहर का आदमी आया उसको बना दिया। उसका नाम क्या था?
मस्करी घोषाल।
मस्करी घोषाल नाम ही मस्करी था, मस्करी घोषाल। तो वो क्या किया उसने, वो समोचरण छोड़कर निकल गया। हाँ, बाहर जाकर दुकान मान दी बोलते हैं। यानी क्या किया वो, ऐसा उसको गुस्सा आया यानी मैं मेरे जैसा काबिल कोई नहीं, मैं तो गणधर का शिष्य और मुझे गणधर बनाने के बदले ये कैसे बने। और उसको गुस्सा के वो समोचरण में आना बंद कर दिया। तो उसने अपना हित किया कि नहीं? हाँ साहब, अहित। तो अहित करने में कौन है, स्वयं कारण है या पर कोई वो इंद्रभूति नहीं आते तो उसका चांस लगता ना कम से कम, ख्याल में आया? अरे भाई, जिसका जब जो नंबर लगना है वो लगेगा ही, ख्याल में आया? तो यहाँ जो कह रहे हैं ना कि अपना हित अहित स्वयं से ही होता है, अन्य से तीन काल में नहीं होता। शुद्ध आत्मा के आधार से ही धर्म होता है और शुभ राग अथवा व्यवहार से कभी भी धर्म नहीं होता। यह अनेकांत है, यानी
अनेकांत का उल्टा अर्थ लेते हैं ना, इससे भी होता है उससे भी होता है, उसको अनेकांत समझते लोग।
बराबर बोलो बोलो।
ये भी सच्चा वो भी सच्चा, यानी वितरागता से भी धर्म होगा शुद्ध आत्मा के और शुभ राग से भी धर्म होगा, यानी वितरागता दोनों से होगी, दोनों से मोक्ष मार्ग होता है, उसी को लोग अनेकांत समझते हैं। यानी बौद्ध को क्या मानता है, क्षणिक है, और वेदांती है वो नित्य मानता है, दो झूठ हुए ना। और जैन मानता है वो नित्य भी है अनित्य भी है, तो दो झूठ मिलकर एक सत्य हुआ। वो जो एकांती है, एकांत यानी सर्वथा वैसे मानते हैं। तो अनेक लोगों की ऐसी मान्यता है कि जैनियों के सब जो मानते हैं ना अलग 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 सबका इकट्ठा करके सबका एक जैन धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। 100 झूठों को एक साथ करके जैन नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने सारा सर्वथा माना था, और जैनियों में स्यात यानी कथनचित किसी अपेक्षा से वर्णन आता है, और किसी अपेक्षा से वस्तु के अनेक अंगों को स्वीकार किया जाता है। तब उसको अनिकांत कहते। यहाँ क्या बात हो रही है कि शुद्ध आत्मा के आधार से ही धर्म होता है, ही लगा है ना, सम्यक एकांत हुआ एक, और शुभराग अथवा व्यवहार से कभी भी धर्म नहीं होता, ये दूसरा एक सम्यक एकांत, और दोनों मिलाकर एक अनेकांत हुआ। अस्थि नास्ति दोनों बता दिए।
ख्याल में आया? हाँ जी,
जहाँ जो अपेक्षा होगी नित्य अनित्य भी होगी ना, वहाँ अनेकांत में वो भी धर्म आते हैं। अलग अलग धर्मों की जिसकी बात होगी वैसे वहाँ वर्णन आ जाएगा।
हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। मेरे में अस्थि है, पर में नास्ति या अस्थि नास्ति लगेगा। अब आपको अस्थि नास्ति लगाना हो तो ऐसा लगा सकते हैं कि शुद्धोपयोग से ही धर्म होगा और अन्य से नहीं होगा, ऐसा ले लो। तो यह तो हमने अभी देखा, सवा सात हो गए हैं, तो ये आज पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चाहो तो कल बात करेंगे। देखो क्या कहा कि यह अनेकांत है, शुद्ध चिदानंद आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। जो राग शेष रह गया है वह राग को क्या प्रतिबद्ध है? राग को क्या कहा? हाँ, चुपता है ना अंदर। क्या करें, ये तो दवा है आज तक जहाँ पड़े थे उससे बाहर निकलने की।
जिसको धर्म प्रकट हो गया उसके राग को भी अधर्म कहा?
फिर क्या मुनियों के यावानी के ज्ञान से सुझे लो कालो तो वाणी मस्त कण मो सदा देता हूँ।